ಜ್ಞಾನಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೇ. ರಕ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಪಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸುನ್ ರಹೆ ಥೆ ಕಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಜೋ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಹೈ ವೋ ವೃಂದಾವನ್ ಕಿ ಓರ್ ಗಮನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಜೋ ಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೈ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಭೀ ಹೈ ಜೋ ಸಮ್ಯಕ್ ರೂಪ ಸೆ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಉಸೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಹತೆ ಹೈ. ತೋ ಐಸೆ ಜೋ ಆಚಾರ್ಯ ಗಣ ಹೈ ವೋ ಇಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಆಪ್ನೆ ಆಚರಣ ಕೆ ದ್ವಾರಾ. ತೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಭೀ ವಹಿ ಹೈ. ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮೇ ವರ್ಣನ ಆತಾ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಸಾರಿ ಚೀಜೆ ಅಪ್ನೆ ಆಚರಣ ಸೆ ಸಾರಿ ನವದೀಪ್ ಕೆ ಭಕ್ತೋಂ ಕೋ ಸಿಖಾಯೆ. ಇಸ್ಲೇ ವೋ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಿಯಾ ಬನೆ, ಲೀಡರ್ ಬನೆ ವೈಷ್ಣವ ಆಂದೋಲನ ಕೆ. ತೋ ಹಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೇ ಹೈ ಔರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಆಗೇ ಗೌಡಿಯಾ. ತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೋ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಆಗೇ ಕ್ಯಾ ಜುಡ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಫಿರ್ ಮಧ್ವ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸೆ ಫಿರ್ ಉಸ್ಕೆ ಆಗೇ ಔರ್ ಏಕ್ ಟೈಟಲ್ ಜುಡ್ತಾ ಹೈ ಗೌಡಿಯಾ ಗೌ ಉಡಿಯಾ. ದೋ ದೋ ಲೋಗ್ ಇಸ್ಮೇ ಹೈ, ಬಂಗಾಲಿ ಔರ್ ಉಡಿಯಾ ಭಕ್ತಗಣ. ಅಥವಾ ಜೊ ಗೌಡಿಯಾ ಬಂಗಾಲ ಕಾ ದೂಸರಾ ನಾಮ ಗೌಡ ದೇಶ ಹೈ ಔರ್ ಐಸೆ ಪಾಂಚ್ ಗೌಡ ದೇಶ ಹುವಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಜಿಸ್ಮೇ ಬಿಹಾರ ಕಾ ಕುಛ ಭಾಗ ಔರ್ ಕೈ ಐಸೆ ಪಾಂಚ್ ಜೊ ಏರಿಯಾ ಹೈ ಜಿನ್ಕೋ ಗೌಡ ದೇಶ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಥಾ. ಔರ್ ಐಸೆ ಗೌಡ ದೇಶ ಮೇ ಇಸ್ ಆಂದೋಲನ್ ನೆ ಜನ್ಮ ಲಿಯಾ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಜೊ ಪ್ರಮುಖ ಥೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಜಿನ್ಸೆ ಯೇ ಜೊ ವಿಶೇಷ ಶಾಖಾ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಖಾ ನಿಕಲ್ ಆಯಿ. ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಿ ಕೈ ಶಾಖಾಯ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ದ್ವಾರಾ. ತೋ ವೈಸೆ ಹಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಆಗೇ ಜೋ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೈ ವೋ ಉಸ್ ಶಾಖಾ ಕೋ ಪ್ರವಾಹಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜಿನ್ಕೋ ತತ್ವವಾದಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಬ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಗಯೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಆಯಿಲಾ ಜಹಾ ತತ್ವವಾದಿ ಉಡುಪಿ ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇಖಿ. ಉಡುಪಿ ಮೇ ಕೋನ್ ನಿವಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೆ. ತೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನೆ ಯೇ ಜೋ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೈ ಉನ್ಸೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲೀ ಔರ್ ಇನ್ಕೋ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಿಯಾ. ಇಸ್ಲೇ ಕಹಾ ಕಿ ಉತ್ಕಲೆ, ಉತ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮೇ ಏಕ್ ನಯಾ ಫಿಲಾಸಫಿ ಜನ್ಮ ಲೇಗಾ. ಮತ್ಲಬ್ ಚಾರೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾ ಮಿಲನ್. ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭುನೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಲೇಕೆ ಇಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೋ ಆಗೇ ಪ್ರದಾನ ಕಿಯಾ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಪ್ನೆ ಸೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರು ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕ್ಯೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಧರ್ಮ ಕೋನೆ ಧರ್ಮಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ವೋ ಅಧಿಕಾರ ಔರ್ ಕಿಸಿಕೋ ನಹಿ ಹೈ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ್ ಜೊ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ ತೋ ವೋ ಅಧಿಕಾರ ಉನ್ಮೇ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಇಸ್ ನಯಾ ಲೈನ್ ಶುರು ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ವೋ ಜಾ ಖಡೆ ರಹೆ ವಹಾಂ ಸೆ ಪರಂಪರಾ ಶುರು ಹೋತಿ ಹೈ. ಹಮ್ ಗಯೆ ಥೆ ನಾ ಮೇ ಜಹಾಂ ಸೆ ಹೂಂ ವಹಾಂ ಸೆ ಲೈನ್ ಶುರು ಹೋತಿ ಹೈ ಪ್ರಸಾದ ಮಹಲ್ ಕಿ ಐಸೆ ನಹಿ. ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ವೋ ಹೈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ಜಹಾಂ ಖಡೆ ರಹೆ ಜಹಾಂ ಸೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರದಾನ ಕರೆ ವೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೈ ಉನ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಉಂಗ್ಲಿ ನಹಿ ಉಠಾ ಸಕ್ತಾ. ಲೇಕಿನ್ ಕೈ ಐಸೆ अल्प बुद्धि के लोग हैं जो इस गौड़िया संप्रदाय को ऑथराइज संप्रदाय के रूप में स्वीकार नहीं करते। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि थे तो उन्होंने कहा ये लोग ऑथराइज संप्रदाय नहीं है। जयपुर में उन्होंने कहा कि इनको जो गोविंद देव का पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके पास वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है। हाँ, तो फिर बलदेव विद्याभूषण उन्होंने वेदांत सूत्र का गोविंद भाष्य की कॉमेंट्री लिखी और गोविंद देव ने डिक्टेट किया उस वेदांत सूत्र के भाष्य को। इसलिए हमारे संप्रदाय का ये भाष्य है गोविंद भाष्य। इसलिए प्रभुपाद ने अपना जो गीता है वो डेडिकेट किया है, किसको समर्पित किया है, बलदेव विद्याभूषण को। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण, तो वैसे माधवेंद्र पुरी ये जो मध्वाचार्य से जो शाखा आती है उससे नया एक शाखा आ जाता है, ये ब्रांच जो विशेष रूप से राधा कृष्ण का जो प्रीति है उसको प्रदान करता है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी हमारे संप्रदाय के एक विशेष आचार्य हैं जिनके बारे में हम सुनना शुरू कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से। और एक किसके मुख से सुन रहे हैं हम लोग, चैतन्य महाप्रभु से। साक्षात चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद आदि जो उनके साथ चार भक्त थे जगन्नाथ पुरी की यात्रा में, कौन कौन से भक्त थे, एक बोले, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित और नित्यानंद प्रभु, ये चार जन अद्वैताचार्य ने उनको दिए। तो चैतन्य महाप्रभु उसका वर्णन करने लगे और उनके जीवन का, और माधवेंद्र पुरी का, क्योंकि भक्तों का जीवन सुनने से भक्ति करने का जो उत्साह है वो वर्धन होता है, इंस्पिरेशन हमें मिलता है उनके कार्यकलापों को देख के, उनका एटीट्यूड को देख के, उनके विनम्रता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को प्रैक्टिकली देखना है तो वो भक्त का जीवन है, तो ये है। तो शास्त्रों को हम पढ़ सकते और समझ में नहीं आ सकते जो स्क्रिप्चर्स हैं जब तक भक्तों के जीवन को हम नहीं देखते। हाँ, चाहे हजारों क्वालिटीज का वर्णन करें लेकिन उनको देखना है कि कैसे वो अप्लाई की गई है, कैसे कौन से सिचुएशन में अलग अलग भक्तों का जीवन है। इसलिए कहा करते हैं कि कृष्ण के जीवन से भी ज्यादा, जो कृष्ण का लीला कथा से भी ज्यादा दिव्य आनंद देने वाली जो चर्चा है वो भक्तों की है, वो विशेषता है। इसलिए ऐसे जो माधवेंद्र पुरी, क्योंकि कृष्ण अकेले कोई लीला नहीं कर सकते है कि कृष्ण की कोई अकेला लीला नहीं है, उसमें भक्ति शामिल है। कोई लीला याद है आपको कृष्ण ने अकेले कुछ लीला की, बहुत कठिन, हाँ तो कृष्ण नहीं कर सकते। तो भक्तों के बिना भगवान उस लीला का संपादन नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना में गोपीनाथ की चर्चा कर रहे थे तो गोपीनाथ की जगह किन का गुणगान कर रहे थे, माधवेंद्र पुरी का। हाँ, तो माधवेंद्र पुरी का गुणगान स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कर रहे थे। तो ये गुणगान करना भी एक अपने आप में एक विशेष गुण है। हाँ, ये क्वालिटी भी डेवलप करना बड़ा टफ है। हाँ, किसी भक्त का गुणगान करना, वैष्णव का गुणगान करना, इससे बहुत तीव्रता से शुद्धि होती है। भक्तों का गुणगान हम करते रहेंगे, वैष्णव आचार्य गुणों का, हाँ ये शुद्धि होती है और वो एटीट्यूड बन जाता है फिर भक्तों का गुणगान। ऐसा नहीं कि बस मैं आचार्यों का ही गुणगान करूंगा, मेरे आसपास जो भक्त है उनके लिए मैं ये हूँ, उनके लिए कठिन है गुणगान करना। हाँ, तो ये स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इनका गुणगान करते माधवेंद्र पुरी का, क्योंकि ये पूरे लीला में इस चर्चा में यही वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा सेल हो जाते हैं, बेचे जाते हैं। कृष्ण भक्तों का जो धन है वो कृष्ण है, या जो कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का मतलब भक्त, कृष्ण किसकी प्रॉपर्टी है, उनके भक्तों की प्रॉपर्टी है। तो कृष्ण माधवेंद्र पुरी की प्रॉपर्टी है, शैल परिक्रमा करे गोविंद कुंडे आसी स्नान करे वृक्ष तले आछे संध्याय वसी। तो माधवेंद्रपुरी अकेले, उनके बारे में वर्णन आता है क्यों अकेले ट्रैवल करते थे। हाँ, वो एक मुझे याद नहीं कौन से ईसाई ऋषि में होगा, प्रजल्पा से बचना चाहते थे। वो कहते मैं प्रजल्पा से बचना चाहता हूँ, क्या पता कि कैसे लोग होंगे। तो कहते शैल परिक्रमा, शैल क्या है, गिरी गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के, गिरिराज धरन के। तो मैं जो पहले बार गया, गिरिराज धरन क्या है, गिरिराज धारण करने वाले की, शैल परिक्रमा। तो माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा की और एक जगह आए गोविंद कुंडासी। तो गोविंद कुंड वो स्थान है, क्योंकि हर बार आप जाते तो श्रवण करते गोविंद कुंड की महिमा। ये गोविंद नाम कृष्ण को इंद्र ने दिया था, आज भी वहां जाएंगे जो हाथी का चरण निशान है अंदर जाके। तो जो गोविंद कुंड में माधवेंद्रपुरी आए और भगवान के दिव्य लीला का स्मरण हो उठा उनको। गोविंद कुंड में क्या किया था भगवान ने, भगवान ने कुछ नहीं किया था, भगवान तो वहां गवे चराने आए थे अपने मित्रों के संग में। लेकिन बाकी लोग आके उन्होंने एक विशेष कार्य किया कि ब्रह्मा आ गए, इंद्र, इंद्र ने जो अपराध किया था कि अपराध कैसे मुक्त होगा, कबे हवे बोलो से दिन अमार अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि, कि कब होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शरणागति में कि अपराध कब मेरा खत्म होगा और शुद्ध नाम में कब रुचि आएगी। तो इंद्र ने तो अपराध किया था, और किसके प्रति अपराध किया था, कृष्ण के प्रति। तो छोड़िए, भगवान तो सहन कर लेते हैं, लेकिन उनके जो प्रियजन हैं उनके प्रति अपराध करे। हम अपने लिए तो टॉलरेट करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रिय वस्तु है उसके साथ कोई कुछ खिलवाड़ करे तो टॉलरेट नहीं करते। प्रिय चीज है या फिर प्रिय चीज है हमारे लिए ठीक है, इसको जोर से कहा रख दे तो हमारा हृदय टूटने लगता है। तो कृष्ण के हृदय में कौन निवास करते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद। तो कृष्ण भी उनके हृदय में उनके भक्तों को धारण करते हैं, साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। और साधु का मतलब ही है जो कृष्ण को शत प्रतिशत शरणागत होता है उसको क्या कहते हैं, साधु। ऐसे साधु भगवान के हृदय में निवास करते हैं। तो इंद्र ने ऐसे साधुओं को, सारे साधु थे वृंदावन के, उनको कष्ट देना चाहा भक्तों को। तब इस अपराध के बाद कैसे अप्रोच करे भगवान को अपराध क्षमा करने के लिए, तो गए, किसको ले गए, सुरभि काऊ। क्योंकि उनको अप्रोच करना है तो भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की ओर जाना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा, भक्त का। तो भगवान को अप्रोच करने के लिए इंद्र ने सुरभि का आश्रय लिया। उसके पीछे पहले, क्योंकि डायरेक्ट मुझे कृष्ण देखेंगे तो मेरे ऊपर पता नहीं आग बबूला हो उठेंगे, मतलब गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुरभि को आगे किया, पीछे छुपके गए। उन्होंने सब पहले सुरभि को देखेंगे ना, बाद में मुझे देखेंगे तो फिर ठीक है। हम भी कभी कभी करते, जैसे स्कूल में जाया करते थे तो मास्टर बड़े हो रहते थे तो पिताजी को पीछे, बच्चा पीछे, उनके पिताजी को देखेगा मास्टर फिर दे रहे। तो वैसे ही जो स्कूल है, जो इंद्र है, उन्होंने सुरभि को आगे भेजा और भगवान ने उनको देखा। तो सुरभि जो भगवान के महान भक्त हैं और उनका आश्रय उन्होंने लिया वहां। तो ऐसा गोविंद कुंड में एक विशेष ये लीला हुई थी जहां भक्तों का आश्रय लेकर भगवान को अप्रोच करने की जो शिक्षा है इंद्र देते हैं। और इंद्र अपने आप में बड़े ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी है। मैंने कहा था उनकी तो उनके ऊपर कथा कही जाए तो एक सेमिनार हो सकता है। इंद्रा, इंद्रा के कार्यकलाप क्या क्या नहीं किया उन्होंने। फिर भी कृष्ण कहते मैं उनके लिए अवतरित होता हूँ भागवतम में, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उस श्लोक की शुरुआत क्या है, उसमें उस श्लोक में शब्द आता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये ते चांश कला पुंसा, ये सारे जो मैंने वर्णन किया है फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में। सुत गोस्वामी कहते मैंने जो वर्णन किया है 25 अवतारों का लगभग उन्होंने वर्णन किया, ये ते चांश कला, ये अंश है या उन अंशों की कला है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन अभी ये जो है कृष्ण है ये कौन है? स्वयं भगवान है। तो ऐसे स्वयं भगवान ने क्यों ये अवतार धारण किए? कहते इंद्र आरि व्याकुलम। इंद्र आरि का मतलब क्या है? शत्रु। आरि मुरारी, मुरारी शब्द आता है, तो मुर मतलब मुर नाम का राक्षस था, आसुर था, उनके आरि में शत्रु मुरारी जो कृष्ण है। तो इंद्र आरि व्याकुलम, जब इंद्र अपने आरियों से शत्रुओं से व्याकुल हो उठते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? मृडयंती युगे युगे प्रकट होते हैं युग युग में। तो ऐसे इंद्र भक्तों को अप्रोच, भक्तों के द्वारा कृष्ण को अप्रोच करते हैं। और माधवेंद्र पुरी इन सबका स्मरण करते हुए गोविंद कुंड में आए, उन्होंने गोविंद कुंड का स्नान किया और संध्या वंदन आदि करने के लिए वहां बैठे। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी की छु बलि लहसिया। तो भक्तों को अपना यात्रा में जाते तो पहले से प्रोग्राम रहता है, गोविंद कुंड में पहुंचेंगे तो वहां प्रसाद होना चाहिए, फिस्ट मेनू के साथ साथ। तो इन्होंने अरेंज नहीं किया, इनके लिए साक्षात कौन अरेंजमेंट कर रहे हैं? अनन्य चिंतयंतो मां, भगवान ने ये वचन लिया है, ये प्रतिज्ञा भगवान ने ले ली है और वो तोड़ नहीं सकते। भक्तों के लिए उन्होंने बोला है ये चीज, क्या योग क्षेम मैं प्रदान करूंगा आपको प्रसाद, बस आप परिक्रमा के लिए निकलो। तो वो आता है अयाचिक वृत्ति है इनका। गोपाल बालक एक दुग्ध भांडलैया, तो गोपाल आज भी कहते हैं ना लोग, कोई वृंदावन में जाता है तो भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि राधा रानी उसका ध्यान रखती है, कृष्ण की जो अंतरंग शक्ति है। तो ये माधवेंद्र पुरी जो इसके मूर्ति है, मूर्तिमान स्वरूप है, कि कैसे निर्भर होना है भगवान के ऊपर, जो शरणागति का एक लक्षण है कि पूरी तरह से गाय के समान, गाय को आप सेल करते हो, बेच देते हो, उसको पता नहीं आगे जहां भी सेल करोगे तो गाय वो मेरा ध्यान रखेगा, मेरा स्वामी क्या है ध्यान रह सकता है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। तो माधवेंद्र पुरी खुद अपना ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जैसे वो बैठे तो एक बालक आते हैं उनके लिए, किचु बोलीला हसिया, हंस के वो बालक कहता है दूध का पॉट लेके, पुरी यही दुग्ध लैया कर तुम्ही पान, मागी के ने नाही खाओ किबा कर ध्यान। हे पुरी, कौन से पुरी? वो पुरी नहीं जो हम करते हैं, पुरी बनाते हैं। पुरी यही दुग्ध लैया कर तुम्ही पान, हे पुरी गोसाई आप क्या करो, इस दूध को ले लो जो मैंने लाया है और वो पान करो। और आप क्यों नहीं केने मागी, क्यों नहीं मांग के आप क्यों नहीं खाते हो, और कौन सा आप मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सा ध्यान कर रहे हो? ऐसे नहीं कि वो ध्यान कर रहे थे कब दूध आएगा, अभी बहुत भूख लगी है, हमारा प्रसाद हमारे लिए टाइम में तैयार होता है फिर भी ध्यान रहता है प्रसाद, तो अच्छा है, किसी ना किसी चीज से आसक्ति निर्माण होना चाहिए। एक भक्त थे जिनको बहुत प्रसाद में आसक्ति थी, और जब फेस्टिवल था तो जैसे टेंपल से कूदते नीचे राधा पारसारथी के, वहां से प्रसाद हॉल तो दूर है, तो वो बहुत अपने आप को अनावर कर रहे थे। अनावर अनावर का क्या, अनावर जानते ना क्या है, कि मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, तो अनावर इतना अनावर हो गया था और एक्सट्रेसी में थे प्रसाद प्रसाद प्राप्त करने के लिए। तो जैसे दौड़े तो प्रसाद शुरू हो गया था, तो ऑलरेडी लंबे प्रेयर की कौन वेट करेगा, महाप्रसाद है वहां, आपके धैर्य की परीक्षा होती है, पेशेंस उत्साह, उत्साह तो है लेने के लिए, उत्साह निश्चय भी है पहुंचना है प्रसाद मॉल में, चाहे एंट्री हो या ना हो। हम कभी कभी वो पीछे से पहुंचते थे, डीटी डीटी है ना जो परिक्रमा मार्ग से चाहे यहाँ 10 लाइने लगे, कुछ भक्तों को जिनको पता है चाहे वो आई वाइफ डिवोटीज हो या कोई, पीछे से पहुंच जाएंगे सीधा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? निश्चय है, उत्साह है, उत्साह से ही गुण आता है, निश्चय उत्साह निश्चय, और आगे क्या है? धैर्य धैर्य नहीं धारण कर सकते हाँ, क्योंकि सर हो रहा है इतना एक्स्ट्रा सी है प्रसाद लेने के लिए, तो वो उनके लिए बहुत कठिन था प्रेयर चांट करना हाँ, तो भाव में आके वो प्रसाद प्रेयर को छोटा कर देते हैं दो शब्दों में। कौन से वो दो शब्द थे? महानिताय एक शुरुआत का शब्द और एक का जय निमाय जय निताय जैसे कृष्णदास कविराज ने कहा है, रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति। तो यहाँ केवल दोनों को नहीं संबोधित किया है उन्होंने, इसमें किस कितने गोस्वामी इसको किया है? छह गोस्वामी। ये छह गोसाई करी मुई तारा दास, मैं उनका दास हूं। तो इनके साथ ऐसे नहीं था माधवेंद्रपुरी। आप क्यों नहीं मांग के खाते हो? अरे कौन सा आप मेडिटेशन कर रहे हो? किस चीज का ध्यान लगा के बैठे हो? आपका बक ध्यान तो नहीं है? बगुले का जो ध्यान है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। बालके र सौंदर्य पुरी हईल संतोष तहार मधुर वाक्य गेल भोक शोष। ये है हियरिंग से क्या हो जाएगा? हंगर और थर्स्ट, भूख और शोक बंगला में कहा गया, भूख और प्यास क्या होगी? हियरिंग से जाएगी, हमारी तो बढ़ती है गौर गोविंद महाराज वो क्लास लेते थे भागवतम क्लास, जो 8 बजे शुरू होता था और 11 बजे खत्म होता था, 3-4 घंटा कभी 4 घंटा वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वो लंच में कन्वर्ट हो जाता था और वो डंडा लेके एक छड़ी होता था उनका, आगे जो बैठा है सर में मारते थे, धड़ाम रास्कल हे प्रेम, प्रेम जी तुम ठीक से नहीं सुन रहे, मतलब पूरे क्लास में एक के पीछे लग जाते थे हर चीज उसी के लिए हाँ? वो कहते हाँ चुपके से टीवी देखते हो वॉचिंग हाँ? ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते थे, मतलब प्रेम जी किसी ना किसी भक्त को लेते थे पूरे क्लास का वो बना देते थे ऑब्जेक्ट हाँ, मतलब किसी एक वो संबोधित करते थे कि जीव हाँ कैसे ये हो रहा है कृष्ण से अलग हो रहा है, तो पूरे क्लास को वैसा करते थे। तो यहाँ माधवेंद्र पूरे कृष्ण के उस दिव्य सौंदर्य को देखा और वो हैला संतोष, एक ही चीज हमें संतुष्टि दे सकती है, सौंदर्य के पीछे हम यदि भागना चाहते हैं तो भौतिक सौंदर्य हर क्षण ये आके देखना चाहती है कि नहीं? श्री के सौंदर्य को सर्वाधिक जो सुंदर है स्त्रियों को पुरुष का सौंदर्य, उर्वशी ने स्वयं अपने मुख से बोला है अपनी कमियां स्त्रियों की कमियां, और तुलसी महारानी भी तुलसी जो थी तुलसी फॉर्म जो उन्होंने भी स्त्रियों के बारे में बहुत लंबा लेक्चर दिया जालंधर को जो उनके पति बनने जाने थे, तो उसमें वो कहती है कि स्त्री भी हर समय नया नया पुरुष ढूंढती है, नया नया चेहरा देखना चाहती है, संतुष्ट नहीं हो सकता हमारा जो आंखें हैं, क्योंकि आंखों का विषय वस्तु क्या है? रूपम, और वो रूप कैसा होना चाहिए? अनुरूप, बहुरूप, एक रूप में नहीं होगा बहुरूप अनेक अनेक नाना रूपों को देखना चाहते हैं, एक बार नहीं बार बार देखो हजार बार देखो ये कृष्ण के लिए है एक्चुअली, इसी को कहते प्रतिबिंब, जो ये भगवान ने कहा 15वें अध्याय में भौतिक जगत में सारी चीजें क्या है? विकृत फॉर्म में है, शीशे में आप देखते हो राइट जो हाथ है लेफ्ट में दिखाई देता है, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली ऐसे होता है या वो पिक्चर्स में होता है कई बार तो ये विकृत प्रतिबिंब है, तो जो प्रेम है वो यहाँ किस चीज में कन्वर्ट हो गया है? काम। और जितना तीव्र काम है उतना ही कृष्ण के प्रति हमारा तीव्र प्रेम है, लेकिन उसकी जगह भी इस तीव्रता ने ली है, काम ने वो जगह ली है। तो बार बार देखो, तो रूप को देखना चाहता है संतुष्टि के लिए, माधवेंद्रपुर ने एक बार देखा उस बालक के सौंदर्य को तो संतुष्ट हो गए, लेकिन इस संसार का सौंदर्य हमें नहीं संतुष्ट कर सकता, नहीं कर सकता हर बार भौतिक, देखो चाहे वो फिल्म स्टार है नए नए मूवी एक्टर्स आ रही है, हर बार नया नया देखना चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो जाएगा फिर भी उसकी आंखें ये हो गया ऐसी तीव्रता से देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये काम इतना शक्तिशाली है। जो संत इसमें क्या है, ये रो रहे थे, राजा ययाति अपने दुर्दशा का वर्णन कर रहे थे अपने पत्नी को, देखो मैं एक बकरा बन गया और आप बकरी के पीछे भागने लगा। उन्होंने अपना तुलना एक बकरा और बकरी से किया, कहते कि कितना घृणित है, कृष्ण जैसे सौंदर्यशाली पुरुष को छोड़कर मैं कैसे ये चीज के प्रति आकृष्ट हो गया। तो जो ये बार बार देखने की चीज है या जो सौंदर्य है जो हमें शाश्वत संतुष्टि दे सकता है वो केवल कृष्ण है। और जिनके सौंदर्य कैसा है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च, कैसे है नवयवनम, हर समय उनके सुंदरता में सौंदर्य में नवीनता 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 बढ़ती है। आप डेटिस का दर्शन करोगे सुबह और दोपहर को जाके ठीक से देखो, फिर से आपको क्या महसूस होगा, नवीनता नवीनता। तो यह है कृष्ण का सुंदरता बढ़ती है, कृष्ण का ही नहीं उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनका सौंदर्य बढ़ता है। प्रभुपाद आप देखेंगे प्रभुपाद का सौंदर्य, कोई है सुंदर पुरुष, मैंने तो किसी पुरुष को नहीं देखा जो इतना सुंदर है अपने जीवन में कृष्ण के अलावा। मैंने पहली बार जब मुझे भगवत गीता मिला, जब मुझे पता भी नहीं था इस्कॉन का, तो गीता मुझे जब मिला मराठी फटा हुआ, तो मैंने फोटो देखना शुरू किया तो देखा, अरे ये पहली चीज मुझे उस पूरे गीता बुक में एक ही चीज ने मुझे ये किया कि एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत सुंदर है, एक चीज मुझे वे हो गई सबसे पहले, क्योंकि उनका ग्रे कलर का शॉल और ऐसे बैठे ना जप करने की मुद्रा में, मैंने और वो इतना, मैंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति इतना सुंदर, वो चीज। और क्यों, क्योंकि कृष्ण का सौंदर्य ही नवीन नवीन नहीं, उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं चीजें हैं वो नवीन नवीन है। भगवत गीता, भगवत गीता कनिका पीता, भगवत गीता अधीता, मतलब भगवत गीता को थोड़ा भी अध्ययन करता है तो नवीनता प्रदान करती है। तो भगवत गीता भी नवयवनम च है, क्योंकि कृष्ण की वो शक्ति है, कृष्ण से नवीनता होती है, चाहे कृष्ण नाम है, कृष्ण रूप है, कृष्ण लीला है। हर बार तो हम पूतना के बारे में सुनते हैं, हर बार तो वही चीजें सुन रहे हैं, लेकिन क्या है, नवीनता है। गीता के उसी श्लोक को आप एक घंटे के बाद पढ़ो, आपको क्या लगेगा, कुछ और नई चीज। हाँ, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, हाँ वो दिव्य है, जो दिव्य जगत चीज है, जो यहाँ उसने स्थान ग्रहण किया है। तो भौतिक सौंदर्य जो हर समय ये होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, वो सुंदरता हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकती जिसके लिए हम संतुष्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो पुरुष है हर समय अलग अलग स्त्रियों का फेस देखना चाहता है, गर्दन अपने आप ऊपर हो जाती है स्त्री को देखने के लिए, है कि नहीं। तो कहते विशेष रूप से स्त्री के स्तनों के प्रति वो आकर्षित होता है। शंकराचार्य ने एक श्लोक लिख दिया कि क्या नाभि स्तन भारम, वो वर्णन करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि इससे मुक्त कैसे हो सकते हो, सोल्यूशन देते हैं उसी श्लोक में कि क्या चीज आकृष्ट करती है पुरुष को और फिर वो कैसे वो मुक्त हो सकता है उस सौंदर्य को देखने के लिए, कैसे वैराग्य आ सकता है उसके बारे हृदय में, तो एक श्लोक बोला करते थे। तो उन्होंने उस श्लोक में यही कहा कि जैसे देखोगे वो थॉट्स एंटर होते तो तुरंत सोचो, क्या सोचो, अरे ये तो चमड़े से जस्ट प्लास्टर किया है ऊपर से, कितना गंदे अंदर स्टूल, सिर्फ स्टूल देती है इतना स्टूल, क्या आनंद है उसमें, क्या सौंदर्य है, फिर अंदर पता नहीं कितना मल मूत्र नाक से सुबह क्या निकलता है। किसी से के बारे में सोचो कि नाक से गंदे निकल रहा है, कान से, मतलब इज अमेजिंग कितनी चीजें। उन्होंने तो बड़ा, मैं एक दिन वो ले लूंगा श्लोक, तो बड़ा शक्तिशाली है, शंकराचार्य के उस श्लोक को मेमोराइज करेंगे तुरंत आप हो जाएंगे, लेकिन सही समय में सही चीज याद आनी चाहिए। अजामिल के जैसे नहीं, अजामिल पंडित थे, श्लोका बहुत आते थे उनको, लेकिन सही समय में नहीं। हाँ, तो डिटर्मिनेशन की कमी हो गई अजामिल के जीवन में। श्लोकों का तो भंडार था उनके पास, बहुत प्रवचन सुने थे, बहुत प्रवचन दिए भी थे उन्होंने, ग्रंथ भी पढ़े थे। हाँ, लेकिन हाँ, भगवान कहते हैं कि अब विपक्षता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी जब मन इतना शक्तिशाली होता है वो हरण करने लगता है। तो माधवेंद्र पुरी संतुष्ट होते हैं, और यही है किसी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होना है तो कृष्ण है जिनके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होना है। इसलिए बार बार देखना चाहिए भगवान के विग्रह के फॉर्म को, उनके पिक्चर आदि को, जिससे क्या होगा। रूप गोस्वामी ने कहा कि आपका जो आकर्षण है, आपने परिवार संबंधी मित्रगण देशवासी इन सबके प्रति यदि आकर्षण है तो वो आप मुक्त हो जाओगे। यदि इनके प्रति अट्रैक्शन है तो वृंदावन मत जाना, और वृंदावन जाओगे तो कहां मत जाना, केशी घाट में मत जाना। केशी घाट में गए तो अब वहां जो त्रिभंग ललित फॉर्म में जो एक व्यक्ति खड़ा है ब्लू बॉय, उनकी ओर मत देखना। उनकी ओर देखोगे तो सारे आसक्तियां अटैचमेंट क्या हो जाएगी, डिटैच्ड हो जाएगी। हाँ, ये की है। तो सबको डिटैच करना है तो एक अटैचमेंट डेवलप करनी होगी, है कि नहीं। ये सोल का स्वभाव है, वो बिना आसक्ति के जीवन यापन नहीं कर सकता। दो चीजें इस नेचर है जीव का, आत्मा का, क्या, एक तो अटैचमेंट और दूसरा है सर्व करना। ये दो चीजें हम उसके साथ जुड़ी हुई है, इन बिल्ट है, वो रह नहीं सकता। तो उसके लिए यही है कि असली डिटैच्ड होना मीन्स कृष्ण से अटैच्ड होना, इसको रियल डिटैचमेंट कहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी संतुष्ट हो गए भगवत सौंदर्य को देख के, और यही रामानुजाचार्य के जीवन से वो धनुर्दास का आप लाइफ सुनते हैं। धनुर्दास सुंदर आंखों को देखना चाहता है, अरे बाबा क्या सौंदर्य है इस आंखों में, चलो मैं आपको ऐसी आंखें दिखाता हूँ जो इस आंखों से ना हजारों गुना बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। तो रंगनाथ की आंखों आंखें दिखाई श्री रंगम में भगवान की, वो ऐसे कमल नयन को देखने मात्र से वो जो धनुर्दास है वो कहते अरे मैं कौन से झूठे सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हुआ था। हाँ, तो ये है। इसलिए बार बार भगवान के विग्रह के फॉर्म को देखना होगा, तभी उनके उनके प्रति हमारा आकर्षण बना रहेगा। इसलिए उनके बारे में सुनना भी होगा। जैसे कैसे आकृष्ट हो गए थे रुक्मिणी देवी, उनका तो ये था कि कभी उनको ना देखने को मिले थे कृष्ण ना कुछ, लेकिन उन्होंने श्रवण किया था किसके द्वारा, नारदा श्रुत्वा गुणान, वो वर्णन करती है, हरे हरे मैंने सुना हे कृष्ण आपके दिव्य गुणों को, नामों को मैंने सुना, जिसके द्वारा मेरे हृदय आपकी ओर आकृष्ट हो गया। तार मधुर वाक्य गेला भोक शोक, और उनके मधुर वाणी को सुनने मात्र से उनकी तृष्णा, उनकी जो भूख प्यास आदि खत्म हो गई। तो ये श्रवण का ये है इफेक्ट है, श्रवण का ये परिणाम है कि तृष्णा, तृष्णा और भूख, ये शरीर की भी भूख और मतलब शरीर की जो भूख प्यास है वो भी कम हो जाती है, और दूसरा जो भौतिक हैंकरिंग है तृष्णा की चीज के लिए हमारे अंदर, है ना, तृष्णा का मतलब ही है अनफुलफिल्ड डिजायर, जो चाहते हैं हम नाना प्रकार के भोगों की इच्छा हमारे अंदर है, उसके लिए हम प्यासे हैं भौतिक इच्छाओं के लिए। तो कृष्ण के इस वाणी को सुनने मात्र से, कृष्ण की वो डायरेक्ट वाणी सुन रहे हैं, हमारे लिए कृष्ण की वाणी क्या है,
भगवद्गीता।
हाँ, भगवद्गीता, और अभी लॉर्ड चैतन्य भी कृष्ण वही वाणी जो हम सुन रहे हैं। तो ये अंतर नहीं है भगवान की जो डायरेक्ट वाणी है या उनके वाणी को जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें अंतर नहीं है, वो उतने ही शक्तिशाली अभिन्नत्वात है, अभिन्न है, तो उसी को हम सुनते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भूख शोक शोक जो तृष्णा है, हंगर और थर्स्ट प्रभुपाद ने कहा है, माधव इंद्रपुरी का दूर चला गया। और परीक्षित महाराज कितने दिन तक दूर चली गई थी उनकी भूख प्यास? सात रात। जन्म हमें तो वो इसकी रात निकालना बड़ा कष्ट होता है। कौन सी निर्जला की? हाँ, मतलब तप्त हो जाता है सब, शरीर मन बुद्धि सब जलने लगता है। हाँ, ब्रह्मचारी बार बार शावर लेता रहता है और कब पानी पी जाता है पता नहीं चलता पूरे ब्रह्मचारी आश्रम को। तो ऐसे कह रहा हूं मैं। तो ये है इफेक्ट। इसलिए कहते हैं निद्रा आहार विहार क्या है विजितो। हाँ, वो क्या करते थे रूप सनातन गोस्वामी आदि, ये विजय, विजय का मतलब ये है शरीर का डिमांड नेचुरली कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल कंटेंट इतना होता है कि वो बॉडीली जो स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है, चाहे निद्रा है चाहे आहार आदि है, क्योंकि ये रस वो कृष्ण रसायन को पी रहा है, नाम गुण रूप लीला सर्विस ये सब चीजें क्या है कृष्ण रस है। हाँ, तो इस प्रकार से और बीच बीच में उनको टेस्ट करते थे। दशम स्कंद जब बोलना शुरू हो गया परीक्षित महाराज को बोला, अरे अरे परीक्षित जाओ 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 वहां थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाओ। हाँ, यस गो एंड ड्रिंक सम वाटर, जाओ जरा जूस पी लो शुद्ध जूस, पानी पी लो। नहीं नहीं नहीं, आप जो रस मुझे पिला रहे हैं उससे और रस पीने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, आप बस आप सुनाते जाओ, कृष्ण के बारे में बोलते जाओ। हाँ, मैं मेरा और सुनने का जो इच्छा है और वृद्धिंगत हो गया है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये गुण है कृष्ण की चर्चा का कि आघाते नहीं। भागवतम में आता है कि व्यक्ति जितना अधिक सुनते जाता है वो ये नहीं थकता नहीं है कृष्ण कथा को सुनने से। पूरी कहे के तुम्हें कहा तो मारवास के मते जाने ले आमी कोरी उपवास। अरे अरे कौन सी पुरी कह रहे? माधवेंद्र पुरी। अब ध्यान रखिए भ्रमित मत हो जाइए। पुरी कहे के तुम्हें, हाँ भगवान को प्रश्न कर रहे हैं किसमें शक्ति है। हाँ, भगवान को पूछने के लिए के तुम्हें कहा तुम्हार वास। हाँ, भगवान को कह रहे हैं कि के तुम्हें, और सनातन को स्वामी कहते के आमी के आमाय केनो आमाय जारे तापत्रय। हाँ, क्यों मुझे ये तीन प्रकार के ताप कष्ट दे रहे हैं, के आमी मैं कौन हूं। हाँ, सारे लोग कहते आप बहुत पंडित हो विद्वान हो बहुत, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। क्या पता नहीं है? मैं कौन हूं। हाँ, और यहाँ कह रहे आप कौन है भगवान को के तुम्हें कहा तुम्हार वास, कहा आपका निवास है, के मते जाने ले आमी करी उपवास, और कैसे आपने जान लिया कि मुझे मैं उपवासी हूं। तो इस प्रकार से बालक कहे गोपामी यही ग्रामे वसी आमर ग्रामे ते केह नारे है उपवासी। ये है बालक कहे, उस बालक के कहा मैं कौन हूं गोप हूं गोप। पहले तो दो प्रश्न पूछे तो दोनों के उत्तर दे रहे हैं। हाँ, गोपामी आमी कौन है? गोप है। और ये ओरिजिनल आइडेंटिटी बता रहे हैं, ओरिजिनल कौन है कृष्णा। हाँ, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी कहते नंद गोप के जो कुमार हैं, नंद गोप कुमाराय किसके कुमार? नंद गोप के। तो फिर ये भी क्या होंगे? गोप होंगे। तो कहते गोपामी यही ग्रामे वसी हमारे ग्रामे ते के हो ना रहे उपवासी। और हमारे गांव का ये नियम है कि हमारे गांव में जो भी प्रवेश करेगा उपवासी, भूखा नहीं रहेगा, फास्टिंग अलाउड नहीं है यहाँ। जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी को बांध के रखा है, वहां एकादशी करना पाप है एकादशी अलाउड नहीं है। हाँ, वहां कोई एकादशी वगैरह नहीं, जगन्नाथ प्रसाद पाते रहते, लेकिन गौड़िया वैष्णव के लिए है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा, महाप्रभु यहाँ सारे लोग तो एकादशी उपवास नहीं करते, हमें क्या करना चाहिए? भक्तों को लग रहा था छूट मिले तो बहुत अच्छा है हम हर समय छूट चाहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमें छूट चाहिए, सेल 40%, उसमें लिखते हैं 30-60% सेल है, घुसोगे तो 30 ही, मतलब आगे नहीं मिलता आपको शॉप में, क्योंकि हर समय हम छूट चाहते हैं, ये स्वभाव है। हाँ, जपा जब 64 राउंड्स था भक्ति सिद्धांत महाराज से, प्रभुपाद ने कहा चांद 32 राउंड्स, तो कुछ श्याम सुंदर प्रभुवादी जो फर्स्ट बैच था ट्राई किया, बहुत टफ है, नहीं, 16 राउंड्स, बस इतना छूट है, कितनी सारी छूट है। हाँ, तो इन्होंने कहा हमारा ग्रामे ते केह नारे उपवासी। हाँ, तो हमारे गांव का ये विधान है कि इसमें कोई फास्टिंग अलाउड नहीं है। हाँ, तो कितना अच्छा होता, हमें तो कितने फास्टिंग करने होते, अपीयरेंस डिस अपीयरेंस, फिर एकादशी, फिर आ गया पता नहीं, और अवतार, नाना प्रकार के अवतार भगवान ने लिए हैं। हाँ, जन्माष्टमी, उसमें भी पांडव निर्जला एकादशी, हाँ, और कई कई चीजें हैं उसमें, व्यास पूजा आदि है, तो उपवास ही उपवास है। हाँ, तो अच्छा है, उपवास का मतलब ही है, उप मीन्स निकट, वास मीन्स रहना। हाँ, जो निकट ले जाता है कृष्ण के, उसको क्या कहते हैं, उपवास। उपवास मीन्स टेंशन नहीं, अरे उपवास का मतलब है कि जो चीज कृष्ण के निकट रहने को आपको प्रदान करती है। हाँ, उपासना, उपासना इसलिए है, निकट आसन आपको कृष्ण के। हाँ, तो वैसे ये उपवास, और आज क्या, कल ही एकादशी हुआ शायद, तो आज तो फिस्टिंग है, द्वादशी है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी अभी भगवान से उनका आदान प्रदान हो रहा है वार्ता का, और बहुत अद्भुत वार्ता करेंगे माधवेंद्रपुरी कल, जिसको हम सुनेंगे। क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन और आंसर अलाउड नहीं है इस क्लास में,
क्योंकि
अभी 1 मिनट बचा है, तो मुझे वहां